नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के प्रकाश को जानना और निर्णय लेना आसान होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि देशभर में जिला न्यायाधीश पालिका के लिए हुई परीक्षाओं में 50% से अधिक भर्तियां महिलाओं की हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे महिलाएं न्यायपालिका में उच्च पदों पर पहुंच सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में 25 अक्टूबर से शुरू हुए तीसरे अरुणाचल पैरा खेलों में भाग लेने वाले 400 से अधिक प्रतिभागियों को अपनी शुभकामनाएं दी। ये आयोजन 27 अक्टूबर को समाप्त होगा। श्री खांडू ने एथलीटों को दिल से खेलने और सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे ये आयोजन यादगार हो सके। इस बीच श्री खांडू ने सिक्किम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्य टीम शतरंज चैंपियनशिप 2024 में दूसरा स्थान हासिल करने पर अरुणाचल शतरंज टीम को भी बधाई दी है। अरुणाचल प्रेस क्लब ने आज राज्य के पहले पत्रकार स्वर्गीय टारो चातुंग को उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर याद किया। प्रेस फ्रेटर्निटी के सदस्यों ने प्रेस क्लब परिसर में आयोजित एक छोटे से समारोह में अग्रणी को श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय टारो चातुंग को अरुणाचल प्रदेश का पहला पत्रकार माना जाता है। उन्होंने 1988 में राज्य की सिविल सेवा की नौकरी छोड़ने के बाद पत्रकारिता और फिल्म निर्माण का करियर शुरू किया। वो राज्य स्वर्ण पदक विजेता भी थे। स्वर्गीय चातुंग दूरदर्शन में अपने समाचार और विचार कार्यक्रम के लिए जाने जाते थे और अरुणाचल प्रेस क्लब और अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के संस्थापक सदस्य भी थे। अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने कल NIT रायपुर के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पूरी दुनिया के लिए प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि उभरती हुई तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर खोलेगी। उन्होंने इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों से कम लागत वाले स्थानीय समाधानों पर मिलकर काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार AI से संबंधित कार्यों के लिए दी गई है, जो इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इस बीच आज IIT भिलाई में एक अन्य दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने सतत विकास के लिए मूल्यवान ज्ञान के स्रोत के रूप में आदिवासी जीवन शैली की प्रशंसा की। उन्होंने देश की प्रगति में आदिवासियों की भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने समारोह के दौरान 7 छात्रों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए। भारतीय सेना के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद का दूसरा संस्करण आज दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस कार्यक्रम में भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करने के लिए भारत और विदेशों से नीति निर्माता, रणनीतिक विचारक, शिक्षाविद, रक्षाकर्मी, वैज्ञानिक और विषय विशेषज्ञ एक साथ आए। भारत, अमरीका, रूस, इसराइल और श्रीलंका के प्रमुख वक्ताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि सुरक्षा विकसित भारत एट 2047 की ओर भारत के विकास पथ को कैसे प्रभावित करती है। दूसरे दिन आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने बहुपक्षीय दुनिया को आकार देने में भारत के विकसित और प्रभावशाली भूमिका पर व्याख्यान दिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इस साल अगस्त में 20,74,000 नए श्रमिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना के तहत नामांकन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय इंदु चुकू। Chief Justice of India Dr. Justice D.Y. Chandrachur, in an exclusive interview with Akashvani News yesterday, has called for greater participation of women in the workplace, including the judiciary. The Chief Justice added that greater female representation highlights the lived experiences of women and reaching decision-making with diverse perspectives. He also highlighted that in the open recruitment examinations for the district judiciary across the country, over 50% of the recruits are women. He further expressed hope that this trend will pave the way to more women rising to higher judicial positions in the future. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 115th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast on the entire network of Akashvani and Doordarshan, All India Radio News website and News On Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of the AIR News, DD News, PMO and Information and Broadcasting Ministry. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Chief Minister Pema Khandu, in a social media post today, extended his best wishes to over 400 participants competing in the third Arunachal Para Games, which kicked off from 25th October at Rajiv Gandhi University. The event will end on 27th of October. Mr. Khandu encouraged athletes to play with heart and strive for success, making the event memorable. Meanwhile, Mr. Khandu has also congratulated the Arunachal chess team on clinching second place in the Northeast States Team Chess Championship 2024 held in Sikkim. Arunachal Press Club remembered late Taro Chatung, the first journalist of the state, on his fifth death anniversary today. The members of the press fraternity paid tribute to the pioneer at a small function held at the press club premises. Late Taro Chatung is considered as the first journalist of Arunachal Pradesh. He started his journalism and filmmaking career after leaving his state civil service job in 1988. He also had a state gold medal awardee. Late Chatung was also known for his news and views program in Doordarshan and was a founding member of the Arunachal Press Club and the Arunachal Union of Working Journalists. President Draupadi Murmu, speaking at the convocation, NIT Raipur yesterday, said that artificial intelligence has become a priority area for the entire world and asserted the emerging technology will open up vast opportunities for youths in various sectors. She urged engineering and medical students to work together on low-cost local solutions. She noted that recent Nobel Prizes in Physics and Chemistry were awarded for AI-related work, showing its growing impact. Meanwhile, speaking at another convocation program at IIT Bhilai today, she praised the tribal lifestyle as a resource of valuable knowledge for sustainable development. She emphasized the need for tribal participation in country's progress. The president also awarded gold medals to 7 students during the ceremony. The second edition of the Indian Army's flagship international seminar, Chanakya Defense Dialogue, ended in Delhi today. The two-day seminar brought together policymakers, strategic thinkers, academia, defense personnel, veterans, scientists from India and abroad to discuss the security and development. Speakers from countries like the United States, Russia and Sri Lanka offered a global perspective on how security influences India's developmental trajectory toward Viksit Bharat in 2047. The Dapurijo Forest Department, led by DFO Boken Pao, conducted a surprise inspection of daily markets in Dapurijo on Friday, seizing wildlife meats and various seasonal birds including squirrel, porcupine, deer, barbets, and wild doves. The confiscated items were later destroyed. No arrests were made as individuals denied ownership of the meat. That's all in this news bulletin. Namaskar.